हेडिंग, फिल्म का नाटक पर दबाव। फिल्म का नाटक पर दबाव। गर जब फिल्म पहले बन गई और नाटक बाद में तैयार हुआ, अब मैं जो देखता हूँ तो फिल्म ने नाटक पर जो गजब ढाया था वो मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मैं 95 साउथ एवेन्यू के अपने MP वाले फ्लैट के ड्राइंग रूम में रिहर्सल कर रहा था। ये बात अप्रैल 1975 की है और मई में कमानी हाल में चरणदास चोर का शो तय हो चुका था। एक महीने के अंदर मुझे नाटक में से वो सारी चीज़ें हटा देना था जो कथानक और विषय की रवानी और हम आहंगी की राहों में बुरी तरह बाधा डाल रही थी। मुश्किल ये थी कि फिल्म से नाटक के लिए कुछ चीज़ें बेहद नायाब मिल गई थी। मसलन वो दृश्य जिसमें मंत्री उद्घाटन करता है, इसके अलावा दूसरे बेहद खूबसूरत सीन फिल्म में थे जिनमें छुटकारा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था और उनसे छुटकारा पाना मुश्किल भी था। मिसाल के तौर पर अदालत वाला सीन जिनमें चरणदास चोर के जुर्म में अदालत के कटघरे में खड़ा है, सीन बेहद दिलचस्प लिया गया था और तमाशा ये कि जज का पार्ट में खुद अदा कर रहा था और मुझे इस पार्ट में बहुत मज़ा आ रहा था। और सिर्फ मुझको नहीं, दूसरे कलाकारों और उन लोगों को भी जो सिर्फ रिहर्सल देखने आया करते थे। मैं कपड़ा काटने की दर्जी की बहुत बड़ी कैंची से अपने नाखून काटते हुए बेवकूफ़ी के सवाल करता था। फिल्म में पढ़ने का चश्मा नाक पर टिका होता था, आंखें चश्मे के ऊपर उठाकर मुजरिम को देखता था और जब बोलता था तो कुछ हकलाकर बोलता था। इस सीन को रखने के लालच से ऊपर उभरने में मुझे देरी लगी। अलबत्ता पेज 14, चोर का साथी फौरन काट दिया गया। जौहरी की दुकान की चोरी का सीन भी दिलचस्प था मगर कट गया। एक गधा भी था जो फिल्म में असली था, चरणदास उस पर सवार होकर निकलता था। नाटक के रिहर्सलों में मैंने दो एक्टरों को मिलाकर एक गधा बनाया, बाद में उसे भी रद्द कर दिया गया। ये सब कुछ लेकिन एक सीन से पीछा छुड़ा पाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। वो था परलोक की चोरी का सीन। उसके रिहर्सल में ठाकुर राम चित्रगुप्त का पार्ट करते थे और इस मजे से हंसते थे कि हंसी से लोगों के पेट में बल पड़ जाते थे। फिर चोर की भूमिका में उनके जोड़ीदार मदन लाल थे। वैसे भी ये दोनों जब जब मंच पर एक साथ उतरते, चाहे नाटक कोई सा भी हो, लोग बाग एक पल भी हंसी बिना नहीं रह सकते थे। बस ये दृश्य हमारे दिलो दिमाग में बस गए। एक दिन मैंने राजीव सेठी और इंद्रराज दान दोनों को रिहर्सल देखने के लिए बुलाया। दोनों थिएटर के आदमी थे और अच्छे विजुअल आर्टिस्ट भी थे। राजीव हमें सेट डिजाइन देने वाले थे और इंद्र अपनी वर्कशॉप नाटिका में पेपर मेसी से गहने और दीगर सामग्री बनवा रहे थे। नाटक लगभग तैयार था। मैंने उन्हें पूरा नाटक दिखाया और आखिरी सीन दो अलग अलग अंत लिए हुए दिखाए। हेडिंग, कमानी में पहला शो। कमानी में पहला शो। सबकी राय हुई कि चित्रगुप्त के सीन को न काटा जाए, फिर भी कमानी के पहले शो में मैंने नाटक बिना परलोक के सीन को दिखाने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, इनवर्टेड कॉमा, एक दिन इस तरह शो करके देख लेते हैं, अगर नहीं जमा तो दूसरे दिन उस सीन को वापस ले आएंगे, इनवर्टेड कॉमा बंद। मोनिका कहती रह गई कि इनवर्टेड कॉमा, तुम बस यही करते रहो, वही होगा जो पहले एकाध बार हो चुका है। लोग देखेंगे और बाहर जाकर यही कहेंगे कि नाटक बोरिंग है, इनवर्टेड कॉमा बंद। बात फैलती गई, फिर तुम इसे बदलते होगे, बस इसके बाद कोई देखने न आएगा। खिस्सा कोताह नाटक हुआ। मैं अपने फैसले पर अटल रहा। लोग देखते रहे, हंसते रहे, फिर चरणदास चोर के मारे जाने पर एकदम सन्नाटा छा गया। लोग खामोशी से धीरे धीरे उठने लगे। जाते जाते उन्होंने देखा कि नाटक मौत पर खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। एक गाना उसके बाद आखिरी गाना। पहले में लोगों की लंबी कतार फूल लिए धीरे धीरे बढ़ी। जिस तरह चोर की मौत हुई थी, वहां सफेद पंथी झंडा स्थापित कर दिया गया था। उस पर नारियल चढ़ाया गया, फूल फेंके गए। इसके बाद आखिरी गाना, इंटरलूड कॉमा। एक चोर ने रंग जमाया, कोरस ने गाया, और गाने के अंत में हाल देर तक तालियों से गूंजता रहा, गूंजता रहा। पेज 15। लोग हॉल में खड़े थे, बहुत से दरवाजों तक पहुंच गए थे। जहां जहां थे वहीं खड़े खड़े बस देर तक तालियां बजाते रहे। नाटक कामयाब हुआ। राजू दौड़ा हुआ आया और लिपट कर बोला, यू आर अ जीनियस, इट इज वंडरफुल। बस वह शो आज तक नहीं भूलता। साफ जाहिर था कि लोग मौत के अंजाम की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। बस इस सीन को देखकर देर तक सकते के आलम में आ गए। गनीमत है कि आखिरी सीन को बदलने की नौबत नहीं आई। राजीव, इंद्र, मोनिका सब इस अंत पर राजी हो गए। पैराग्राफ चेंज। नए नाटक के बारे में समय से पहले ये सोच लेना कि वह सफल होगा या नहीं असंभव है। परख की अंतिम कसौटी दर्शक की होती है। निर्देशक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकने के बाद प्रस्तुति को उस अंतिम कसौटी पर छोड़ देने पर मजबूर है। कोई 70 आर्टिस्ट कमानी के शो में मैंने उतार दिए थे। जिला दुर्ग के ग्राम धनौरा के देवदास, बंजारे की पंथी पार्टी के 12 सदस्यों के अलावा 12 सदस्यों की महिला पंथी पार्टी में भी थी। लिटिल बेलेट ट्रूप के रानू वर्धन और हेमंत दास गुप्त के साथियों ने संगीत की रचना भी की थी। ऑर्केस्ट्रा में रानू वर्धन खुद सितार पर थे और हेमंत दास गुप्ता, जिन्हें हम ऊषा दा कहते थे, विचित्र वीणा पर थे। उनके अलावा LBT के दिनेश सरोत पर और ज्ञान शर्मा, जो बाद में आकाशवाणी में आ गए थे, चेलो कोष्ठक में सेलो पर थे। दो आर्टिस्ट वायलिन बजा रहे थे। म्यूजिक में बहार आ गई थी। गर्ज हमने दर्शकों पर ध्वंस जमाने में कोई असर न उठा रखी थी। राजीव सेठी, सब जानते हैं कि अच्छे डिजाइनर हैं, लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते हैं कि वे एक अच्छे एक्टर भी हैं। अपने कॉलेज के ज़माने में उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड की कॉमेडी लेडी विंडरमेयर्स फैन में बहुत अच्छा और वाइल्ड ही के खास स्टाइल में पार्ट किया था, जो मैंने बरसों पहले लेडी इरविंग कॉलेज के लिए अंग्रेजी में पेश किया था। पैराग्राफ चेंज। पहला सेट जो राजीव ने डिजाइन किया था, उसमें भी थोड़ी बहुत ताम झाम थी। चबूतरा वही था, 6 फीट बाई 12 फीट, ऊंचाई 9 इंच। लेकिन वह पेड़ जो बाद की तमाम प्रस्तुतियों में और आज तक चबूतरे के पीछे बीच से जरा उठकर स्थापित किया जाता है, उसके बजाय कमाने के शो में चबूतरे के ऊपर पीछे की तरफ लकड़ी का एक कुंदा लगाया गया था, जिस पर पर्दे लटके थे। पर्दों पर तस्वीरें पेंट कर दी गई थीं, यह दिखाने के लिए कि ये मंदिर चौपाल मालगुजार। पेज 16। का गोदाम सरकारी खजाना या रानी की ख्वाबगाह है? पर्दे रस्सियों पर थे, रस्सियां खर्चियों पर, और जब कोरस के लोग सामने एक कोने में खड़े गा रहे थे और बाकी मंच पर अंधेरा होता था, तो राजीव खुद पर्दे उठाने गिराने में लग जाते थे। बाद में मैंने देखा कि हमें जगह की पहचान दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसी एक चबूतरे का प्रयोग अलग-अलग दृश्यों में अलग-अलग ढंग से किया है। कभी सीन चबूतरे पर, कभी चबूतरा छोड़कर मंच के बाकी हिस्से पर सीमित, और कभी दोनों जगहों पर इस्तेमाल। गोया इस तरह संतुलन बदल बदल कर और फिर संवाद के शब्दों और अभिनेताओं की मुद्रा सामग्री और एक्शन की मदद से दर्शक पहचान लेते हैं कि जगह कौन सी है। चुनांच चंद पर एक शो के बाद सेट पहले यू बदला की चबूतरे के पीछे 20 से जरा हटकर, जहां आजकल केवल एक पेड़ होता है, वहां दो बांस जरा तिरछे जावीये कोष्ठक में कोण कोष्ठक बंद पर खड़े कर दिए जाते और ऊपर उन बांसों के बीच पेड़ की एक शाख लगा दी जाती। पैराग्राफ चेंज, आगे चलकर ये एहतमाम भी खत्म हुआ, महज पेड़ रह गया। फिर उस पेड़ में कुछ और सादगी आ गई। लकड़ी का एक चौखटा खाचा बनाकर उसके अंदर एक मोटे और अंदर से खोखले बांस का कोई 3 फीट लंबा टुकड़ा, जो हम साथ लेकर चलते, ठोक दिया जाता और उस बांस के अंदर किसी पेड़ से कटी हुई कोई 4-5 फीट ऊंची पत्तों भरी डाले लगा दी जाती। बस कमानी के 400 के तुरंत बाद त्रिवेणी के खुले मंच पर 1200 एक साथ हुए। हर रोज हाल भरा रहा और उसके फौरन बाद 1200 हरियाणा के शहरों में कराए गए। बस गोया नाटक चल पड़ा। महिला पंथी पार्टी त्रिवेणी तक साथ रही, उसके बाद वापस भेज दी गई। संगीत वालों का पूरा अलमा हरियाणा भी गया और उसके बाद भी बहुत दिनों तक साथ साथ चलता रहा। फिर वो भी कम होते होते तबला, पेटी, क्लेरिनेट, मंजीरा, ढोलक में सीमित होकर रह गया और इस तरह नाटक को हल्का फुल्का बनाकर हम सारे हिंदुस्तान की गर्दिश करते रहें।